તારીખ 29/9/1993 શ્રી સમયસર ગાથા 206 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 379
આત્મા ઓર જીતના આત્મા જ્ઞાન જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા ધ્યાન કરશે એસા આત્મા એસા નિશ્ચિત કરશે ઋષિ પ્રાપ્ત કર જ્ઞાન સ્વરૂપ માત્ર જ્ઞાન સ્વરૂપ હૈકલ્પી ઉપદેશાત્મક વચન વ્યવહાર હોતા જિસકો જ્ઞાન માત્ર એસા આત્મા હૈસા નિશ્ચય હોતા આત્મરુચિ તીવ્ર હો જાતી અન્ય આત્મરુચિ કમી હો જાતી દીકરા જીતના સત્ય કલ્યાણ હૈ જીતના જ્ઞાન પહેલા આત્મા ગયા અભી આત્મા કા કલ્યાણ ગયા પહેલે કદમે સત્ય આત્મા કિતના હૈ જીતના જ્ઞાન અબ કહેતે કે તેરા આત્મ કલ્યાણ જીતના હૈ કે જીતના જ્ઞાન હૈ જ્ઞાન પદ મેં સંતોષ રખી કરવા દૂસરી ગતિ હમરે કલ્યાણ કે પ્રયાસ નહીં કરના સિર્ફ ધ્યાન મેં હમરા આત્મ કલ્યાણ સમાવિષ્ટ હૈસા નિશ્ચય કર લેના પર એસા નિશ્ચય કરે ઓર દૂસરે કલ્યાણ કે હમરા મીઠા પ્રયાસ ન હો પ્રસાદ પ્રયાસ ન હો એસા કહેના કલ્યાણ આત્મશાંતિ કી પ્રાપ્તિ આત્મિક સુખ કી પ્રાપ્તિ આત્મા આત્મા કે આનંદ કી પ્રાપ્તિ આત્મકલ્યાણ હમરે કિસી પ્રકાર કે દુઃખ કી ઉત્પત્તિ ન હો ઓર સરળતા સરળતા સુખ કી ઉત્પત્તિ હો દોનો પ્રકાર ઉત્પત્તિ જ્ઞાન કતના કલ્યાણ હૈ જીતના જ્ઞાન હૈ ઉતના હી કલ્યાણ એકદમ આરાધના કા વિષય ગુજરાત આરાધના સ્વરૂપ તો આરાધના કે વિષય મેં કોઈ લંબી થોડી બાત નહીં હૈ સ્વરૂપ ઓર લગને વાળા હમરા પરિણામ બીચ મેં કોઈ રાગ નહીં अन्य चीज का तो समान नहीं रहता, इसमें वो ग्राम विकल्प भी नहीं है। तीर्थाधिक प्रया तो शास्त्र के वेद से बस करके स्वर्ग पर लग जाता है, आ जाता है, बस आराधना वहां से वो भी उसी वही कल्याण हो, वही कल्याण है। दूसरा कोई कल्याण का स्रोत है ही नहीं। हम हमारे आत्मा में लीन रहे, यही हमारा कल्याण है। आत्मा में लीन रहे तो आत्मा समझ नहीं आए तो ज्ञान में लीन रहे, बस अगली बात। आत्मकल्याण की बात तो
बाद में क्यों लिया? आत्मकल्याण की बात को बाद में क्यों लिया, पहले क्यों नहीं लिया?
हाँ, पहले तो बताया आत्मा कैसा है, ऐसा बताया। आत्मा को जाने बिना या निश्चय लिए बिना फिर इसमें संतुष्ट उसका कल्याण कैसे हो, उसमें बात आएगी। पहले तो हमारा संतुष्ट कैसा है उसको जाने बिना हम तो हमारे कल्याण करना है, वो बात समझे तो बात होने वाली। ये प्रश्न जो है आत्मा को क्रम का है, तो ब्रह्म का है कि सर्वप्रथम स्वरूप निश्चय करना है। ये कल्याण अंतर में आ सकता है। माया स्वरूप इतना महान है और अद्भुत से भी अद्भुत है, अद्भुत से भी अद्भुत है। ऐसा स्वरूप ज्ञान में आने पर, ऐसा स्वरूप वास्तविक होने पर, ऐसा निश्चय होना नहीं, भाव होने पर, विकल्प से निश्चय होने की बात नहीं है। हमारे स्वरूप के प्रति हमारे परिणाम आकर्षित हो जाएंगे और हमारे स्वरूप में भी कल्याण होगा। इसको तुम्हारे इसमें क्या लिया? पहले हमारे आत्मस्वरूप का निश्चय हो, फिर हमारा उपयोग अंतर्मुख होगा, स्वस्थ होगा। क्योंकि उपयोग को अंदर आने में कोई हिसाब का कारण तो चाहिए, पर जहां भी उपयोग लगता है वहां कोई हिसाब का कारण नहीं लगता है। तो सबसे कोई हिसाब का मुख्य कारण है तो ये सुख है। सुख के निश्चय से उपयोग मान चला जाता है, सैल चला जाता है, तो उसको निश्चय पर कोई जबरदस्ती करनी पड़ती नहीं। मैं उपयोग को अंदर में या अंदर में उपयोग ला लूँ, उपयोग के बाहर में अंदर में उसको विकल्प करना पड़ता। ऐसा कैसे मूर्ति आत्माएं ऐसा महान है, विकल्प है। पहले उसका भाव भाषण हो गए तो भी एक हिसाब चालू हो जाता है। अनुभव में तो उसका साक्षात्कार है तो अनुभवी को तो उसका हिसाब भाग है, उसमें तो कोई शंका नहीं है। लेकिन अनुभव नहीं हो, अनुभवान हो, क्या वासन में क्या होता है, अनुभवान होता है तो भी अंदर सुख का भंडार है वो कितने में आ जाता है। तो शरीर की जो अनंत काल से जो शरीर की सुख के लिए भटकती थी, सारे जगत के पदार्थ पर भटकती थी, लेकिन कहीं सुख था नहीं, इसलिए मिलता था भी ना नहीं था। वास्तविक सुख का और अनंत सुख का भंडार अंदर में भरा है, ऐसा एहसास होता है।
तो प्रवृत्तियों को अंदर आने में देर लगती है। इसलिए क्या कहा दूसरे पद में ईश्वर जी सबके कल्याण है, कल्याण है इतना ही लिखा, सबके सत्यकार है विशेषण लगा हम लोगों ने सत्य सत्यकार बहुत ही लिया है सबके मैंने सत्ता कोई झूठ नहीं बोलता है सत्ता बोलता है सत्य बोलता है और सत्य धर्म में भी कोई परिभाषा चलती है मुझे देखते हुए वास्तव में माता जाने सत्य को कैसे आया सत्ता का मूल को सत्य कह रहे हैं क्या सत्ता का मूल को सत्य कह रहे हैं जैसे आत्मा में स्वभाव में चेतनता है तो स्वभाव में चेतनता है उसका गुण को हम चैतन्य कहते हैं क्या चैतन्य जैसे सत्य ऐसे समझता है जैसे सत्य ऐसे बोलते हैं चेतना पर से चैतन्य सत्ता पर से सत्य ऐसा त्रिभुवन कल्याण की सत्ता कहाँ है ऐसा कहते हैं अपने कल्याण की सत्ता कहाँ है क्योंकि अपने कल्याण की सत्ता हमारे ज्ञान है और कभी जगह इसका बुजुर्ग भी पति होनी चाहिए विश्वास होना चाहिए कि हमारा कल्याण यहाँ ही है और जगह तो हमारा कल्याण और जगह नहीं है बेकार उपयोग को ले जाए तो कोई लेना जाने की कोई आवश्यकता देखे तो विश्वास आएगा बिना देखे विश्वास नहीं आएगा अनुमान से वासी तो हो गया लेकिन बिकी गया तो फिर विश्वास कैसे आएगा ये समस्या का स्वतः ही समाधान हो जाएगा। विश्वास कैसे करते हैं बाद विश्वास कैसे करते हैं सुख नहीं दिखते हैं दिखता है तो भी विश्वास कर लेते नहीं कर लेते कोई समाधान कर सकते बुद्धिमान आए नहीं करें विश्वास में था दुनिया भर का खाए के पढ़ा था कम से नहीं खाए के नहीं पढ़ाया था बाकी सभी धर्मों का पद गया था ऐसा कहते तो जिसमें हमारे पहचान वाले आ रहे हैं लेकिन इनके साथ कोई बात करो तो हमको भी थोड़ा ज्यादा बहुत बुद्धिमान है दुनिया भर के धर्म के करती है तो मैं तो सुनता कि जैन शास्त्र नहीं पढ़ गया होगा पहला पूछा कि जैन शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा दुनिया भर के पढ़े इनको कोई बात नहीं हमारा तो ये प्रश्न है कि हम लोगों ने सुख कहाँ देखा है वो थोड़ा कम इस महीने का नहीं था क्या क्या है मदरिया किसम को बहुत श्रद्धा को बहुत गुणा से देश है और बहुत अपने दिवाल देखा है बहुत बड़ा श्रोत लिखा है पूरी बात पर कुछ भी बना होता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए सबको हमको एक समय काम आती है तो सकल भी एक समय का बना दो, सकल भी एक साथ बना दो, बॉडी भी एक साथ बना दो, अगर भगवान एक साथ बनाना है तो वैसे मैंने के एक साथ बनाया क्या होगा? कोई नहीं बात को नहीं मानते, उसकी बात को मानने वाले को प्रोजित हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी प्रकृति को उपास को रोकने वाला ये धर्म है, भगवान को कोई प्रगति नहीं कर सकते। वैज्ञानिक तो उससे बात करेंगे, साइंस तो आजकल इसके लिए तो किसी को कोई भ्रमणी नहीं करें, भ्रमणी बना हो सकती है लेकिन विज्ञान की तो भ्रमण नहीं हो सकती है। और आप बच्चिया को मानने वाले हैं तो आपने क्या सुख को मटेरियलाइज किया है? ये प्रश्न उठाया है, कहा देखा आपने? आप भी दौड़ते हैं, अमेरिका वाले भी दौड़ते हैं, भारत वाले भी दौड़ते हैं, किसके लिए दौड़ते हैं? तो हमारे पैसे बढ़े, हमारी समृद्धि बढ़े, हमारे सुख साधन के जो भी संयोग बढ़ते रहे, लेकिन बिना मटेरियलाइज किए बिना वो दौड़ कैसे चली, कैसे चलती है? आप तो बुद्धिमान है, बताइए देखना है, देश को देखना है कि आप व्यापारी जैसे कपड़े पहनते हो लेकिन व्यापारी को नहीं दिखते। देखने से क्या, देखने से क्या वास्ता है? वास्ता मेरा तो एक प्रश्न है, तो हमें अगर कोई ढूंढ चुका है थोड़े लोग वास्ता है दुनिया देखते हैं, मेरा तो ये जनार्दन का प्रश्न है कि ये बहुत ही धरती है, धरती में तो ले रहे हैं तो आप अंधश्रद्धा को धिक्कार देने क्या? आप तो अंधश्रद्धा को धिक्कारने वाले हैं, तिरस्कार करते हैं उनका, तो आप अंधश्रद्धा में नहीं है क्या? इस विषय में मैं तो ये कहूंगा कि जैसे 1500 साल पहले हमारे भारत में ये बारिश बरसात आने के लिए यज्ञ किया जाता था, बड़े राजा करके इसमें पशुवध करके निखार करके उसमें गौ हवन करते थे, वो अंधश्रद्धा थी? हाँ तो अंधश्रद्धा थी, तो इसकी अंधश्रद्धा में और आपके अंधश्रद्धा में क्या अंतर है? जैसे बारिश नहीं आ सकती वैसे ठीक चीज में जिसको खाता है बताइए, आपने इतना जोर से भी मारा है मुझे कि 1500 साल पीछे निकल गया मुझे तो पता चलिए है। ऐसी दुनिया चलती है, बुद्धिमानों की दुनिया ऐसे चलती है, क्या हाल है इस जगत का? तो मान हो गया काम आप कई दर्शन कर लीजिए, नहीं मानने हैं बहुत बुरा है, तो धर्म नहीं है कि पूरा साइंस है, परफेक्ट साइंस है, तो इस सुख दुख की समस्या जो है वो साइंटिफिकली तो उसको समाधान किया है, उसका कोई सीमा मिलेगा आपको, अपनी जरूर करूंगा, मुझे खास कर मुझे भी करना है और मैं मौसम की लाइब्रेरी में भी भेजूंगा, लेकिन ये तो गड़बड़ी है मुसलमानों की, एक बड़ी गड़बड़ी है हमारे यहाँ। बात तो सही विश्वास है, लोग विश्वास के लिए करते हैं, इतना बड़ा सोफा खाते हैं, इतना बड़ा सोफा खाते हैं, बहुत बड़ा सोफा खाते हैं, निंदा तो नहीं है, लेकिन दुख होता तो भी हमारी शांति है नहीं आती है। जैसे कि जो दरवाजा नहीं था नहीं थी, वहां से बाहर निकलने के आए, दरवाजे से बाहर जाना कहें क्या होगा, हमारा टूटेगा, निकलना है यहाँ से, यही हालत है हमारे। आपको क्या होती है कि भी हमारे बच्चों के कारण से नहीं आती, फिर उधर माँ बाप छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे समझ में क्या समझ को क्या हो गया है, कोई समझ में नहीं आता है कि समझ को क्या हो गया है। तो सच्चा सुख के लिए हमारी खोज जो होनी चाहिए, जिस अनुपात में होनी चाहिए, उस अनुपात में नहीं हो रही है। और ये प्रेरणी कहो करुणता कहो तो वो है कि जिसने वो बात सुनी है नहीं है वो तो कुछ शायद नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुनी है वो खोज नहीं करते हैं, इससे बड़ी करुणता कौन सी हो सकती है। समुद्र में नदी में तालाब में तो आदमी डूब सकता है, लेकिन सुनो अगर पानी में लगे हुए डूब जाए तो फिर वे तो मानने की चीज नहीं होती, फिर तो मानने माने कोई कैसे हो। ये हालत समय होने लोगों की देख करते ज्ञान के ऊपर ग्रहण भगवान मुकुंदाचार्य जैसे महामुनि महान आचार्य थे, वे तो क्षण क्षण में अपने आत्मा में लीन होते थे, उनको भी कर्म आगे शास्त्र लिख दिए, निगम में बैठे बैठे भी शास्त्र विचारे प्राणी बहुत दुखी हो रहे हैं। विश्व के प्राणी जितनी करुणा हमारे से हमारे श्री गुरु ने की गुरु कितने वाले उनके उतनी करुणा अपने आत्मा की करुणा पहले आई, उतनी करुणा सभी आत्मा के पर विकल्प के काल में आए बिना नहीं रहती। तो पवन का पत्र है और सब बता है
पीछे पीछे
जितने जैसी वृत्ति हमको हमारे आत्मा के प्रति है, वैसी वृत्ति हमको जगत के सभी प्राणी के प्रति है। ऐसा लिखा है कोई अंतर, अगर हमारा आत्मकल्याण हम चाहते हैं सारे जगत का आत्मकल्याण हो जाए, ऐसे भाव आते हैं। विश्वादी दिनेश्वर को लेकर के सभी सत्पुरुषों का ये संप्रदाय हुआ कि जमाने में उन्होंने क्या किया कि अगर किसी आत्मा का हित होता हो, तो उसके लिए एक क्षण भी देर नहीं हो, उसका कारण मिलाने में भी एक क्षण भी देर न हो, और उसके कारण के कारण मिलाने में भी एक समय मात्र के लिए हो, ऐसी भावना जिसको होती है ये सत्पुरुषों का संप्रदाय है। ऐसा करते हैं बहुत अतिशय जितने हो ऐसे करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। इसमें से ये कल्याण की बात आई है,
मुक्ति की सुविधा में क्या है, ये तो सत्पुरुषों का बात है, मुक्ति की सुविधा में क्या
मुकुट
सुविधा
सुविचारा, लेकिन सुविचारा जिसको इस मार्ग में जाना है उसमें तो उसी लाइन की ही विचारधारा होगी, आत्मकल्याण की, व्यक्ति कल्याण की, अपने कल्याण की, और कैसा कल्याण की मार्ग है, कैसा मार्ग है कल्याण होता है, पर होते होते दूसरे को कल्याण में वो जाते हैं, दूसरे का कल्याण कर दो वो बात नहीं हो जाता है, ये तो विचार है जैसे तो वो तो अपने आत्मा में से बाहर निकलने नहीं चाहते थे, उतनी अंदर शांति मिलती थी, सुख मिलता था, आनंद मिलता था, तो बाहर निकलते निकलने के लिए वो आलसी हो जाते थे, पर वो मंथर ऐसा सब लिखा है आलसी निकलना लिखा है, फिर भी निकल गए, फिर भी नहीं चाहते हुए भी निकल गए, तो इनसे विकल्प में से जो सत्य रचना विकल्प के निमित्त से जो सत्य रचना हुई, एक तो विकल्प है वो साधना से बात कर करते हुए, इसके निमित्त से शब्द में शास्त्र बने, इसके निमित्त से दूसरों का कल्याण होने लगा, जो इतना पावर है साधना का पावर कितना है, आत्मकल्याण का पावर कितना है, आएंगे तो वही साधना की बात करेंगे, जिस साधना हम आराधन कर रहे हैं किसकी बात करेंगे, क्या पूछा है इतना ही सत्य कल्याण है, ये कल्याण की बात दिखा करेंगे जितना ही ज्ञान है वो आराधन करते करते दिख रहे हैं, हमारा संवेदन में हमारी आराधना वर्तमान में चल रही है, और चलते चलते इसमें कर्म दुबो करके लिखते हैं कि उतना नहीं कल्याण सत्य कल्याण है, कल्याण की सत्ता ही गई और ये नहीं है, बस उन्हें संतोष है, कहीं कहीं आत्मा है महात्मा हो गए, क्या हुआ दूसरे भगवान को देखा महापुरुष बन गए, कहीं पर कल्याण हम बने अभी तो बचते गए, आगे जाकर के किशनगढ़ के घर में कहीं का कल्याण जाएगा, अकेले नहीं जाएंगे, किशनगढ़ अकेले पक्ष में नहीं जाते, आपने अनेक 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 जीवों को कहीं जाना जाता, फिर आप पाता है उसने कल्याण कर दिया, जिसके वसनियों में ऐसा निमित्त पड़ा है कि दूसरों का कल्याण हो जाए, इसकी आराधना की बात क्या करें, इसकी आराधना की बात क्या करें, कैसे करें, तो इसके लिए तो भाषा को खुद को कहना पड़ेगा कि मेरे में शक्ति नहीं है, भाषा को भाषा दी जाए तो क्या बोलेगी, मेरे में उसको बताने के लिए कोई शब्द या शक्ति नहीं है,
सत्य योग में इतना पावर है तो प्रत्यक्ष योग में कितना पावर होगा,
प्रत्यक्ष योग की तो बात ही अलग है, इसलिए तो मुझे कह सकते कि ऐसे कोई महारानी के संत का दर्शन हो जाए तो हमको इसके पीछे निकल जाए, फल पड़े इसके पीछे पीछे भावना इधर दर्शन नहीं होते थे तो इसके योग में ऐसे महापुरुष को भी सभा के बीच में रुकन आता था, आते देखते थे देखा प्रत्येक योग में तो बिना बोले ही आत्मकल्याण हो जाए, क्या इसके योग से आत्मकल्याण हो जाए, पढ़ा था आपने
लिखा
उसको देखना है कुछ संख्या है जो बात लिखी है इसलिए लिखे हैं कि कहीं शास्त्र पढ़ने वाले को भी ये भूल हो जाती है तो हमने सतपुरुष सुना और इसके माने को हमारे पास है जो शास्त्र रूप मजबूर है तो हमने तो बात तो कहेंगे और क्या कहेंगे इसके आत्मा तो हम सोच कर सकते नहीं है सोच कर सकते नहीं लेकिन इसकी वाणी से हम समझते हैं तो ये वाणी तो शास्त्र रूप है हमारे पास क्या फर्क पड़ता है बहुत फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर वो स्वर्ग रहे तो क्या ये अनुभव की बात नहीं आ रही इतना ही सबके अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान में भी स्वयं का संवेदन हो गए यही अनुभवनीय है ऐसा लिया है यही अनुभव ऐसा पड़ा है एकावत एवं सत्यम अनुभवनीय यावत ज्ञान नीति ऐसा लिखा है इतना मात्र ही सत्यम अनुभव नियम सत्य अनुभव करने योग्य सत्य जितना ही है जितना यह ज्ञान है ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा ही उसकी प्राप्त कर स्वयं को अनुभव करके अनुभव की तृप्ति है दूसरे दूसरे जगत के पदार्थ के अनुभव करके तुझे कभी तृप्ति मिली नहीं क्यों नहीं मिली कि अनुभव कर ही नहीं सकता था अनुभव हुए तो तृप्ति हो गए अनुभव हो ही नहीं सकता दूसरा पदार्थ का अनुभव हो ही नहीं सकता राग का अनुभव हो ही नहीं सकता और राग किसी भी सुहाते हुए राग में अपनी तृप्ति नहीं मिली थी इसका यही कारण है कि ज्ञान राग रूप हो सकता नहीं जैसा ज्ञान स्वर्ग रूप नहीं हो सकता ठीक उसी तरह ज्ञान राग रूप नहीं हो सकता कल्पना ज्ञान है कि हमारे लिए ठीक है लेकिन तृप्ति होने वाली नहीं है अतृप्त रह जाएगा आत्मा अतृप्त रहता है एक संवेदन आते ही तृप्ति मिलती है तो आचार फरमाते हैं कि इससे तृप्त हो इसी तृप्ति तुझे मिलेगी और जगह से तृप्ति मिलने वाली नहीं है क्या होगा इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है इसलिए अनुभव के लिए मानुभव के लिए ज्ञानम एवं साधनम सानुभूति एक ही पुस्तक सानुभूति का एक कारण मात्र है कार्य मात्र है जो भी कुछ जो सब कुछ है वो ज्ञान में ही है इसलिए ज्ञान का ही अनुभव है और कुछ अनुभव न कर ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा ही तृप्ति प्राप्त कर इस प्रकार सदा ही आत्मा में तू रत हो तुम्हारी आत्मा में आत्मा ज्ञान को आत्मा ज्ञान को या आत्मा को ज्ञान ज्ञान को उसमें हो उस आत्मा में ही संतुष्ट हो और ज्ञान को बदल कर आत्मा ले लिया क्योंकि ज्ञान सुई है आत्मा ज्ञान ही आत्मा है बाकी के आत्मा के लिए और धीरे धीरे ढूंढने की जरूरत करने की जरूरत नहीं है आत्मा में ही संतुष्ट हो और आत्मा हो से संतुष्ट हो ऐसे तृप्त होने पर तुष्ट वचन अवचन सुख प्राप्त होगा ऐसा सुख प्राप्त होगा कि जिसको कहने के लिए भाषा में सामर्थ नहीं है वचन अवचन सुख है वो शुभ शब्द से मात्र उसका संकेत किया जाता है या संज्ञा दी जाती है इससे आगे हम कुछ कह सकते नहीं है अगर कहना चाहे तो हमको नास्तिक से कहना पड़ता है क्या कि जिसमें कुछ भी दुख न हो उसी का नाम सुख दूसरा नास्तिकता आतुरता बिल्कुल नहीं हो आतुरता का अभाव हो जाए इसका नाम तो नास्ति से बताना पड़ता है अस्थि से एक शब्द है बाकी कहने की कोई परिस्थिति नहीं है कुछ मिलता है कुछ आचार्य महाराज को प्रचुर सुख में ढूंढते हैं जिसने लिखा है अमृत आचार्य महाराज वचन अवलोकन सुख कैसे लिया वचन अवलोकन तो प्रचुर सुख में विराजमान थे किंतु लिखना क्या पड़ा ये वचन अवलोकन कहने हाँ उतनी बात जरूर है प्रत्यक्ष मूलक में क्या जैसे गुस्सा आता है तो बिना बोले समझ जाते हैं लगते हैं तो बहुत गुस्सा आ गया है बोलते नहीं है तो भी लगता है पता चल जाता है पता चल जाता है प्रसन्नशील होते हैं तो वो पता चल जाता है क्या बात हुई बहुत क्षमता रखती है प्रत्यक्ष रूप से को जो भाव बता नहीं सके भाषण में वैसे भाव चेष्टा से दिखने में आता है भाषा को शब्द से सुनाई देता है सिर्फ सुनाई देता है पर उधर तक दिखाई देता है सुनने से हम विचार में कुछ उपचार को लाते हैं लाते हैं या लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से सीधा ही विजुअलाइज हो जाता है भाषण आ जाए ऐसा है कोई विशिष्ट निहित रहने के प्रकार है तो ये प्रत्यक्ष रूप में बनता है जंगल में निराल है ज्ञान अवस्था में विराजमान होते हैं उतनी शांति उनके प्रदर्शन काया के लोग कैसे झलकती है झलकती है झलक क्या है झलकती है तो आपकी चिंता जैसे क्रोधित पानी क्या देखते ही दूसरे को देखते ही उनको पकड़ते क्रोध खा जाता है शांत हो जाकर के इनके पास को भी बैठ जाता है दर्शन करने लगते हैं क्या बोलती है ये शांति की गोली ऐसी अलौकिक शांति सलगती है बिना बोले बोले तो और कारण है ऐसा बनता है कि जीवन में ऐसे हिंसक प्राणी क्रोधी प्राणी सब पाइदा इन सब क्रोध से धर्म पाए ऐसे ऐसे क्रोधी प्राणी उसकी बहुत क्रोध की प्रकृति तीव्र हो जाए ऐसे हैं ऐसे ही भाव में उसका धर्म पड़ता है वहां और फिर बनता है और फिर बनता है ऐसे पाठी शाम बहुत सकते हैं प्रत्येक शिवों में उतना आकर्षण है उतना आकर्षण है क्रोध की प्रकृति को भी शांत पड़ जाता है और दूसरे प्राणी में उनको भी उतना बनता है तो अपनी प्रकृति की तो क्या मजा क्रोध करके आत्मा को कुछ कह सके हमारी जो प्रकृति ऐसी है गुस्सा आ जाता है हमारी जो प्रकृति ऐसी है हम बुरी है हमारी जो प्रकृति ऐसी है हम लोग उनको लोग कहते हैं ऐसा नहीं होना लेकिन क्या है हमारी प्रकृति है अरे क्या प्रकृति है ये प्रकृति आत्मा के आगे कुछ नहीं है इसलिए कृपा करने को भाव बाबू को पा अगर अस्तित्व ग्रहण हुआ तो प्रकृति जोर नहीं खाएगी नहीं खाती अगर थोड़ा बहुत आ जाएगा तो कैसे पैर खेच करके उसको बैठा दे ऐसा ज्ञान मौजूद हो जाएगा हाजिर हो जाएगा तो प्रकृति जोर खाने वाली नहीं है कैसी भी प्रकृति हो प्रकृति सब दोष है सब दोष का प्रकार है अशक्त प्रकार है अनंत प्रकार है एक भी ताकत वाली नहीं है आत्मा की ताकत के आगे इसकी कोई ताकत नहीं है दूसरे जैसे क्रोधी प्राणी में शांत हो जाए ये तो स्वभाव मर्यादा में पा रहा है क्या कितनी मर्यादा में पा रहा है मेरे समय अनंत भाव में पा रहा है अब देखिए आत्मा कितना कितना समृद्ध होगा स्वभाव में कितनी सामर्थ्य होगी कि जितनी जिससे अनंत में भाव में भी एक प्रभाव कोई प्रकृति टीक नहीं सकती टीक नहीं सकती क्या उसका वास्तविक मन हो जाता है घर को पता ही नहीं कोई कहां कैसे चली गई ये माने का हवा हो जाती है धूप पड़ती है तेज पड़ती है तो कहां से कहां वो पानी चला गया जैसे पता नहीं चलता है कि प्रकृति गायब हो जाती है कहां कैसे चली गई पता नहीं चलता ऐसा वास्तु बंद हो जाता है उनको ही अवश्य लगे अरे मेरे पहले ऐसा होता था अब तो होता ही नहीं है क्या बात है ऐसा होता है स्वयं मात्र में प्रभत मात्र में ही ऐसा होता है इतना बहुत सामर्थ्य बढ़ा है हमारी आत्मा में इतने सामर्थ्य बढ़ा है कि इसका कोई हिसाब हम लगा ही नहीं सकते ये सब कहते हैं तो इसका हिसाब हिसाब के बाद तो लिख नहीं सकते हैं ये जो बात दृष्टांत में आती है उसमें दृष्टांत का नाप निकलता है हमारे स्वभाव का नहीं निकलता तो गिरने के लिए कृपा होती को महाराजा जैसे समय रात लेते हैं तो आपको माते नीचे मंदिर बताई नहीं है मानी है उपमा आपात में जो गति हो पाएगी तो कितनी यहां स्वभाव को दिखाने के लिए जो दृष्टान देते हैं तो दृष्टान का नाम है स्वभाव का नाम इससे नहीं आता ऐसी चीज है ऐसे कहते हैं कि ये सुख ऐसा है स्वभाव में कितना सुख है तो जैसे आत्मा पूरे पूरा ज्ञान स्वभाव वाला है वैसे पूरे पूरा सुख स्वभाव वाला है उतना सुख भरा है उतना सुख भरा है कि उधर से मारा जाएगा कितना मारा जाएगा सारी दुनिया इसके आगे कुछ नहीं है गुरुदेव बता देते हैं लोगों को क्या उसमें सुख कहते थे कि इंद्र को अपना वैभव जो है इधर तो कुछ नहीं है, इसके आगे जो यहाँ के बड़े बड़े बल्कि विधियों और लोगों की गिरफ्त जरूरी है, उतने समृद्धि वाले इंद्र है उनको अपनी संपत्ति कैसी लगती है, एक चिंता जैसी लगती है। वो भी खड़ा हुआ हरा हरा नहीं, वो भी सड़ा हुआ निकम्मा हो गया, जिसका जिसके पर चलते तो चलते चलते खड़ा हो जाता है, ऐसे उनको अपनी संपत्ति लगती है। तो उधर में जो नेक मिस्त्री होते हैं उनको ऐसे अपनी संपत्ति का मूल्य है, ऐसा अपना भीतर में सुख का आस्वाद आता है। तो ये सब बताने के लिए सभी दृष्टांत का नाम निकलता है, फिर भी स्वभाव का नाम निकलता ऐसा होता है। अगर निकल है तो अच्छे गुजर हो गया, लेकिन आचार्य द्वारा आपको कहना पड़ता है कि वचन अवरुद्ध है।
दुनिया का सुख तो दिखता है, लेकिन सतपुरुष का सुख कैसे देखें?
सतपुरुष का नजर पहले उसमें जो सुख के वाला है तो वो पहले कैसे दिखे, जो भी सुख के वाला है तो उसको दिखेगा। दिखाएगा थोड़ा भी कहने के मतलब क्या है, इतना 10-15 मिनट की ऐसी बात कहने का मतलब क्या है, क्या प्रयोजन है, तो क्या ऐसा उनके भी इसके लिए कोई नालायक होते हैं क्या? अगर नालायक भी होगा तो उसके लिए नालायक हो जाएगा, उसकी खोज चलाएगा। खोज करने वाले को दिखता है, बिना खोज करने वाले को कभी नहीं दिखता। लिखा है जो कुछ अपने लिखा है, सतपुरुष की पहचान कब होगी, कि पहचान करने की तीव्रता आएगी कब होगी? अगर पहचान के लिए तीव्रता नहीं आएगी तो बगल में बैठे होंगे तो हम सामने भी देखेंगे, ये बात हो जाएगी। और तीव्रता होगी तो 1000 से 5000 के दूर होंगे, लगाएंगे हमको वहां जाए, निश्चय होते ही उस क्षण को उसी सुख को उसी क्षण विदाई करने बाद नहीं है, उसी क्षण इंसान अभी अभी वर्तमान में ही एक समय का उधर में नहीं है, ऐसे उसी क्षण को ही सोने को देखेगा, दूसरों को मजबूर चेहरा कहते हैं। क्या बोले? मान्यान प्राप्ति ही ऐसा संस्कृत शब्द पड़ा है, संस्कृत में तो बहुत भाव करेंगे, माता की समृद्धि को दिखाया जा रहा है। तो विश्व में कहीं संस्कृत जैसी माता समृद्ध माता नहीं नहीं है। तो बड़ा हिंदी यूनिवर्सिटी में इसका शब्द को सबसे बड़ा और कितना बड़ा नाम है, उसका वजन है 2 टन, कितने 2000 किलो, उठाने के लिए 8 आदमी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह उठाने के लिए 8 आदमी चाहिए, बहुत मुद्र एक भाव को दिखाने के लिए 20-25 तक जगह मिल जाएंगे। क्या आपको हाथ कहेंगे, हस्त कहेंगे, कण कहेंगे, पानी कहेंगे, पानी ग्रहण कहता है, पानी मोरो पानी नहीं है, पानी है हस्त, एक वाचक के लिए 25 को मिल जाएंगे उसका भाव की भाव की अभिव्यक्ति संस्कृत में जो होती है
प्राप्ति होगी जिसमें का प्रवेश होने वाला